ओम शांति। आप सभी का यही एक लक्ष्य है कि आत्मा को बाप समान बनना है। हर आत्मा यही लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ कर रही है। तो बाप समान बनने की तीन विधि है। एक विधि है चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर पास विद आनर बनना, ज्ञान योग धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट्स के द्वारा। और दूसरी विधि है संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करके दुआओं का खाता जमा कर संपन्न बनना। और तीसरी विधि है बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां कर संपन्न बनना। तो बाप समान बनने का लक्ष्य है। बाप में दोनों बाप हैं, शिव बाप भी है और ब्रह्मा बाप भी है। शिव बाप समान कर्मातीत बनना है और ब्रह्मा बाप समान सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा आया है, हम आप आत्माओं को बनाने के लिए। आज की भी मुरली थी कि बाप के साथ सर्व संबंध रखो तो सब तरफ से बुद्धि योग हट जाएगा, एक बाप में जुड़ जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे का संबंध रखो तो इतनी आपकी सेवा करेगा जो 21 जन्म तक सुखी बन जाओगे। बाप के साथ संबंध रखो तो बरसा देगा। साजन के साथ संबंध रखो तो तुम सजनियों का श्रृंगार करके सतयुग का महारानी बना देगा। सखा का भाई का संबंध रखो तो आपके साथ खेलेगा। तो बाप के साथ सर्व संबंध निभाने में मुख्य चार संबंध है। अगर वो चारों संबंध हम एक्यूरेट निभाते हैं तो सर्व संबंध स्वतः आ जाएंगे। वो चारों संबंध हैं बाप, टीचर, सतगुरु और साजन, इन चारों संबंध से चार प्रकार की प्राप्तियां हैं। जिन चारों प्रकार की प्राप्तियों में सर्व प्राप्तियां आ जाती है। तो पहला है बाप, बाप से वर्षा मिलता है जिसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भविष्य में तो है ही है, वर्तमान में मिलता है। टीचर से फुल नॉलेज मिलती है वर्तमान में, जिससे हम नॉलेज फुल बन जाते हैं और भविष्य में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। सतगुरु से वर्तमान समय सदमति मिलती है, श्रीमत मिलती है, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और भविष्य में मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। और साजन के संबंध से वर्तमान समय अति इंद्रिय सुख और भविष्य में नंबर वन पद की प्राप्ति। तो चारों संबंध निभाने के लिए बाबा ने चार स्लोगन दिए थे हर एक संबंध का। उन चारों स्लोगन को आप प्रैक्टिकल लाओ तो आप एक्यूरेट संबंध निभाकर संपन्न बन सकते हैं। बाप के संबंध से था आज्ञाकारी बनो, बाप के संबंध से आज्ञाकारी बनो, टीचर के संबंध से ईमानदार बनो, टीचर से सदा ईमानदार रहो, सतगुरु के संबंध से फरमान बरदार बनो। जो सतगुरु का फरमान है 100% फॉलो करो। और साजन के संबंध से क्या स्लोगन है? साजन एक अपने सजनी से क्या चाहता है? बोलो, माताएं अनुभवी होंगी, भाई लोग अनुभवी होंगे, क्या चाहता है एक साजन अपनी सजनी से? यही वफादार बने, वफादार। तो ये चार स्लोगन है, आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमान बरदार और वफादार, चार संबंध है। और चारों संबंध से चार प्राप्तियां बताया। चौथी प्राप्ति जो आपको बताई, बाप टीचर सतगुरु की प्राप्तियों को थोड़ा बहुत तो जानते भी हैं, अनुभवी भी हैं, लेकिन चौथा जो संबंध है साजन का, जिससे अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ये अति इंद्रिय सुख ये सिवाय संगम के और कभी मिल नहीं सकता है। अति इंद्रिय सुख का अर्थ ही है इंद्रियों से अतीत अर्थात इंद्रियों से परे का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख। जिस अति इंद्रिय सुख के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाएं त्याग दिया राजपाट कि एक सेकंड भगवान का साक्षात्कार हो जाए और उस साक्षात्कार से जो सुख उस समय उनको मिलता है उस सुख के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। वो तो सेकंड का साक्षात्कार था लेकिन यहां तो भगवान साक्षात हम आप बच्चों के सामने हाजिर है। तभी गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। शब्द का ध्यान दो, ये नहीं गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गार्डली स्टूडेंट से पूछो या बच्चों से पूछो, नहीं, गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी का अर्थ क्या है? गोप गोपी का अर्थ है, संस्कृत शब्द है, गो माना होता है इंद्रिय इंद्रियां, पी माना पी जाने वाला अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को बस में करके रखा हो, इंद्रिय जीत अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति, जो आत्मक स्वरूप में स्थित रहता हो वही है गोप या गोपी। उनके लिए गायन है जो आत्मक स्थिति में स्थित हैं, उनके लिए गायन है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति वाले को कोई भी विघ्न भगवान से दूर नहीं कर सकता। लेकिन नंबर वन गोप गोपी कौन है? जो नंबर वन है वही नंबर वन की प्राप्ति कर सकता है। तो नंबर वन गोप गोपी कौन है? शास्त्र में तो दिखाते हैं राधा नंबर वन थी। राधा उसे कहा जाता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। राधा उसे कहा जाता है जिसका मन सदा राम के ध्यान में लगा रहे। राम अर्थात शिव बाबा, जिसका मन सदा शिव बाबा के ध्यान में लगा रहे उसको कहा जाता है राधा। जैसे बाबा मुरली में कहता है कि आप सब अर्जुन हो, जो भगवान का ज्ञान अर्जन करे सुने वो अर्जुन, लेकिन नंबर वन अर्जुन है ब्रह्मा बाबा। क्यों? क्योंकि ज्ञान को संपूर्ण रीति से धारण किया। ऐसे राधा सब हैं, लेकिन नंबर वन राधा वो है जिसका निरंतर मन शिव बाबा से हटता ना हो, जिसका गायन है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाले के लिए विघन परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती है। चाहे आग जलाने जैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसको भगवान से दूर नहीं कर सकती। इसका एक गायन है अपना सबका यादगार शास्त्रों में, अर्थात महाभारत में दिखाया है, भागवत में दिखाया है कि एक बार राधा ने, हम आप सब राधा हैं, राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे मुरली दे दो, मैं बजाऊंगी। जैसे आप मुरली बजाते हो मैं बजाऊंगी। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये मुरली मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। राधा ने कहा क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस मुरली के द्वारा हमें पूरे संसार को राजी करना है। शब्द मुरली है, लेकिन यथार्थ शब्द है, हम आप सब बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा आप हमें दिव्य दृष्टि की चाबी दे दो। तो बाबा देता है? देता है बाबा? नहीं, कहता है नहीं, ये दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ मेरे पास रहेगी, आपको विश्व की बादशाही दे दूंगा, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। क्यों? अगर आपको अभी दिव्य दृष्टि की चाबी मिल जाए, मान लो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका यही संकल्प आएगा कि मेरे घर में जो विरोधी हैं उनको साक्षात्कार करा दे। सबसे पहले यही आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। और सेंटर पर इतना बड़ा प्रोग्राम है कि चलो किसी सेठ को साक्षात्कार करा देते हैं, वो दे जाएगा। अब वो उसके लायक है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है करा देना। भावना अच्छी है, लेकिन वो उसके लायक भी तो हो। तो ये बाबा जानता है कौन लायक है कौन नहीं लायक, इसलिए बाबा चाबी बच्चों को देता नहीं। अगर दे दे तो बच्चे मिस यूज करेंगे, यथार्थ यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं देता है। लेकिन बच्चे बच्चे भी कम चालाक नहीं है। बच्चे फिर बाबा से कहते हैं कि बाबा आप कहते हो कि हम बच्चों के प्यार में बांधे हुए हैं, प्यार से मुझ बाप से आप जो चाहो ले सकते हो। तो राधा कहती है, जो नंबर वन बाबा को प्यार करने वाली आत्मा है, कहती है ऐसे तो हर एक समझता मैं बाबा को सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। तो कहती है राधा कि मैं प्यार के आधार से कहती हूं कि आप मुझे मुरली दे दो, क्योंकि मेरे जितना प्यार आपको कोई नहीं करता है। तो बाबा क्या जवाब देता है? शास्त्रों में तो लिखा है कि श्री कृष्ण ने कहा, नहीं राधा, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाले दूसरे हैं। जिसको बाबा कहता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, कि कौन बाबा को कितना प्यार करता है। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो राधा ने कहा, नहीं मेरे से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, अगर करता हो तो आप हमें प्रूफ दिखाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, क्या प्रूफ देखना है? बोला, अच्छा ऐसा करते हैं, जहां श्री कृष्ण बैठा था उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी राधा ने, और उस रेखा की विशेषता ये थी कि उस रेखा के पास आते ही उसमें से आग जलने लगती थी। जो राधा से ज्यादा प्यार करता है उसको आग नहीं जलाएगी, वो अंदर आ जाएगा। जो राधा से कम प्यार करता है वो आग में जल के खत्म हो जाएगा। तो श्री कृष्ण बैठकर मुरली बजाने लगा, वो गोप गोपियां जिन्होंने दिल से श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग का अपना सर्वस्व माना हुआ था, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, सब कुछ बाबा का, अर्थात ऐसी आत्मा जो एक बाबा को याद करती है और एक बाबा के श्रीमत पर चलती है, उसको कहा जाता है नंबर वन राधा या गोपी। तो ऐसी जो गोपिकाएं थी घर गृहस्थ में रहते हुए, शास्त्र में दिखाते हैं कि कोई चावल कूट रही थी, कोई रोटी बना रही थी, कोई मक्खन निकाल रही थी, लेकिन जैसे श्री कृष्ण की मुरली बजी, बाबा की मीठी मुरली, क्या जो एक घंटा क्लास चलता हो तो ठीक है, सारे दिन बाबा की मीठी मुरली क्या है? यही मीठे शब्द, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकी लधे बच्चे, नूरे रतन बच्चे, ये जो बाबा हम बच्चों को प्यार से बोलता है, दिल से लगता है। तो ये जैसे मुरली बजी तो वहां गोप गोपियों को सुनाई पड़ी, अर्थात जिसको बाबा के ये शब्द याद हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, वो आत्मा तो जैसे बाबा में खोई हुई है। और जैसे मुरली सुनाई पड़ी, वो दिखाते हैं शास्त्र में ऐसा कि इस शरीर से, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल के उड़ चला, कहां, जहां श्री कृष्ण मुरली बजा रहा था। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं, स्थूल तो जहां है वही है, जिसको बाबा कहता है कम कार डे दिल यार डे, कर्म करो लेकिन दिल बाबा के साथ रहे। तो जैसे वो सूक्ष्म शरीर उड़ के आया, तो आग स्थूल है, शरीर सूक्ष्म है, इसलिए आग कुछ नहीं कर सकी और वो आत्मा श्री कृष्ण के पास आ गई। तो जो आत्मा जलती हुई आग जैसी परिस्थिति हो, लेकिन एक बाप की याद में समाई हो, तो जलती हुई आग जैसी परिस्थिति भी उस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सदा बाबा छत्र छाया के रूप में उसके साथ कंबाइंड बनकर रहेगा। लेकिन इसके लिए एक ही शब्द रहे, वफादार। मेरा संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति एक के अलावा और कहीं नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर इस सुख की प्राप्ति होगी। और जो आत्मा इस समय जितनी ज्यादा अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करेगी, भविष्य में उतने ही सुख संपन्न राज्य की प्राप्ति होगी। ये संगम युग पर प्राप्त करना है। दूसरी बात है, बाप के साथ बाप का संबंध रखो। अगर बाप का संबंध रखेंगे, वर्षा भविष्य में मिलेगा, वर्तमान में क्या प्राप्ति होती है? वर्तमान में अगर बाप के साथ बाप का संबंध है एक्यूरेट, तो बाप से आशीर्वाद मिलती। आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद साधारण बात नहीं है। जिस आत्मा को भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, उस आत्मा के लिए विघन परिस्थिति कुछ है ही नहीं। उदाहरण के रूप में, जैसे अपने मम्मा बाबा थे, ये भी संपन्न बने, क्या इनके पुराने संस्कार नहीं थे? क्या इनके सामने विघन परिस्थिति नहीं थी? क्या इनके सामने समस्याएं नहीं थी? हमसे हजारों गुना ज्यादा थी, फिर भी पुरुषार्थ में नंबर 1 गए, कैसे, क्या आधार था नंबर वन के? एक ही शब्द था, बाबा के आज्ञाकारी थे, चाहे ब्रह्मा बाबा, चाहे मम्मा, चाहे दादी, नंबर वन आज्ञाकारी थे। आज्ञाकारी हम आप सब भी हैं, भगवान की आज्ञा प्रमाण पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारे आज्ञाकारी बनने में और मम्मा बाबा के आज्ञाकारी बनने में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा आज्ञाकारी पना क्या है? मुरली आज सुनेंगे, करेंगे दो चार दिन के बाद, इसको आज्ञाकारी नहीं कहा जाता है। ऐसे को भगवान की आशीर्वाद नहीं मिलती है। जैसे मान लो आप बीमार हो, आप किसी को बोलो कि आप हमें ये एक दवा ला करके दे दो, एक टैबलेट ला कर दे दो, वो उस समय आपको दवा लाकर एक गोली ना दे, एक टैबलेट नहीं दे, दो चार दिन के बाद पांच छह टैबलेट ला करके दे दे, आप उसको आशीर्वाद देंगे? देंगे आशीर्वाद भाई लोग, माताएं? नहीं ना। अगर उसी समय वो लाकर एक टैबलेट दे देता तो दिल से आशीर्वाद निकलती या नहीं? निकलती ना। तो मम्मा बाबा की यही विशेषता थी कि जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से शब्द उच्चारण किए उसी समय करने लग जाना, उसी समय उसको प्रैक्टिकल में लाने के पुरुषार्थ में लग जाना, इसलिए बाबा की आशीर्वाद मिल गई। हम सबको तो करना तो छोड़ो, यही नहीं याद रहता कि आज बाबा ने मुरली में कहा क्या है, यही नहीं याद है, करना तो बड़ी दूर की बात रही। क्या ऐसी आत्मा को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा? और आशीर्वाद क्या काम करता है? मम्मा बाबा जैसे पुरुषार्थ को बढ़ाता है, जैसे हम आप बढ़ाते हैं पुरुषार्थ को, तो क्या होता है? पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं, पुराने हिसाब किताब सामने आ जाते हैं, चाहे शरीर का, चाहे व्यक्ति का, चाहे वैभव का, चाहे किसी न किसी प्रकार का हिसाब किताब आ जाता है, अपने पुराने संस्कार इमर्ज होने लगते हैं। इसी कारण से हम जैसा चाहते हैं वैसा पुरुषार्थ कर नहीं पाते। चाहना बहुत ऊंची है लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सामने सब विघ्न परिस्थिति सरकमस्टांसेस सब आना शुरू हो जाता है। हमारा पास्ट का खाता है इस कारण से। आया मम्मा बाबा के सामने भी, लेकिन बाप की आशीर्वाद होने के कारण उस विघ्न परिस्थिति संस्कार को आशीर्वाद ने दबा दिया, उसको उठने नहीं दिया, अर्थात पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनने नहीं दिया। आया जरूर लेकिन वो वहीं दब गया, भगवान की आशीर्वाद ने दबा दिया, इसलिए मम्मा बाबा ने जैसा चाहा वैसा पुरुषार्थ करके थोड़े समय में संपन्न बन गए। बाप की आशीर्वाद ने इनके पुरुषार्थ को नंबर वन बना दिया। तो संगम युग पर बाप का आशीर्वाद मिलता है और भविष्य में तो पद की प्राप्ति है। कई समझते हैं कि भगवान से जो हमें वर्षा मिलता है ये देवी देवता पद है। भगवान से आपको वर्षा देवी देवता पद बाप का वर्षा है या नहीं है, क्या कहती है शक्तियां बताओ, वर्षा है या नहीं है? है पांडव, है या नहीं है? अच्छा आपकी आवाज नहीं आई, कुछ ने बोला ही नहीं, है। ये देवी देवता पद बाप का वर्षा नहीं है। क्यों? वर्षा प्राप्ति का तीन आधार है। वर्षा तब मिलता है जब बाप होता है, बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग में बाप होगा, शिव बाप होगा तो कैसे वर्षा मिलेगा? तो अपने बाप से मिलेगा ना, जो शरीर का बाप होगा। भले इस समय का पुरुषार्थ है लेकिन मिलेगा किससे? लौकिक बाप से, पहली बात। दूसरी बात, वर्षा सबको समान रूप से मिलता है, चाहे लायक हो चाहे ना लायक हो, लेकिन वर्षा सबको मिलता है समान रूप से। बाप की जो प्रॉपर्टी है सभी बच्चे को लौकिक में समान रीति से मिलता। हाँ, कोई लायक बच्चा है तो माँ बाप छिपा करके थोड़ा ज्यादा दे देगा, वो अलग बात है, लेकिन नियम प्रमाण सबको समान रीति से मिलता है। लेकिन देवी देवता पद तो नंबर वार है, समानता कहाँ है? नंबर वार है। इस समय नॉलेज सबको समान रीति से मिल रही है। आप आए हो यहां मधुबन में या सेंटर पर, जो बाबा की मुरली चलती है, चाहे 50 साल का पुराना कोई है, चाहे 7 दिन का कोर्स करके आया है, दोनों के लिए मुरली एक ही है, समान है। वर्षा समान रूप से मिलता है। तीसरी बात है कि जब बाप वर्षा देता है तो वर्षा में उस समय, जिस समय देता है बाप वर्षा, दुनिया में तो थोड़ा फर्क कर देते हैं, कुछ देते कुछ नहीं देते हैं, लेकिन यहां बाप समान रीति से देता है। क्या क्या? संगम युग पर बाप का वर्षा है ज्ञान गुण शक्तियां, ये तीन संगम युग पर बाप का वर्षा है। ज्ञान गुण शक्ति, ज्ञान सबको समान रीति से मिल रहा है, गुण भी। बाबा चाहे कल आप ज्ञान में आए, चाहे 50-60 साल से हो, सबको बाबा एक ही टाइटल देता है, सर्व गुण संपन्न भव। ये नहीं कहता जो नए आए हैं दो गुण संपन्न भव, और पुराने को कहे नहीं 16 कला या 10 गुण संपन्न भव, नहीं, सर्व गुण संपन्न भव। ऐसे नए हो या पुराने हो, दोनों को एक ही टाइटल है, मास्टर सर्व शक्तिवान भव। ये नहीं कि नए को 4 शक्तिवान भव और पुराने को सर्व शक्तिवान, नहीं, मास्टर सर्व शक्तिवान भव। तो बाप का वर्षा ये है, देवी देवता पद आपके पढ़ाई की प्रालब्ध है, जो जैसा पढ़ता है वैसा पद पाता है। हाँ, बाप के बने हैं तो सतयुग में जाएंगे जरूर, ये तो पक्की बात है, लेकिन पद मिलेगा पढ़ाई के आधार पर। तो बाप से आशीर्वाद लेने की विधि है, बाप के आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनने की विधि, रोज मुरली से, रोज मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो कि आज मुझ आत्मा को ये पॉइंट धारण करनी है। एक पॉइंट, सारी मुरली नहीं, एक पॉइंट ले लो और उस एक पॉइंट पर अगर आप सारा दिन अटेंशन दो, सारा दिन, तो 8-10 घंटा हो गया। अगर एक पॉइंट पर किसी का 8-10 घंटा अटेंशन रहे, तो क्या वो पॉइंट स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी ना। तो एक दिन में एक पॉइंट, तो 30 दिन में 30 पॉइंट, संपूर्ण बनने में देरी लगेगी? नहीं ना। लेकिन ये हम करते नहीं, करते नहीं हैं, इसलिए संपूर्णता से बहुत दूर है। हमारे सामने पुराने संस्कार, विघन, परिस्थिति सब है, वो तो बार बार उछल खाती है, लेकिन हमें रोज एक पॉइंट न लेने के कारण, बाप का आशीर्वाद न मिलने के कारण विघन परिस्थितियां बड़ी हो जाती हैं और हमारा पुरुषार्थ ठप्प हो जाता है। करना चाहते हैं तो कर भी नहीं पाते, एक तो करते ही नहीं है, दूसरा करना चाहें भी तो विघन परिस्थितियां, संस्कार सब दबा देते हैं, जैसा चाहते वैसा कर भी नहीं पाते। तो ये कल से पक्का करो, मीठे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनकर बाप से आशीर्वाद लो। दूसरा है, टीचर के द्वारा दुआ मिलती है। अगर टीचर की दुआ नहीं तो पढ़ाई आपकी बुद्धि में बैठ नहीं सकती। परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान है, हमारी बुद्धि इम्प्योर है, बिना उसकी दुआ के बैठ नहीं सकता है। भगवान कहता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। बुद्धि पवित्र बनेगी तो परमात्मा का ज्ञान बैठेगा। अब बुद्धि को पवित्र बनाने की विधि तो याद है, योग है, लेकिन वही तो नहीं लगता है। उसके लिए टीचर की दुआ आवश्यक। टीचर की दुआ क्या काम करेगी? टीचर की, जिस स्टूडेंट को टीचर की दुआ मिलती है, उसकी निशानी है कि उसका मन रोज पढ़ने पर विशेष लगेगा, उमंग आएगा, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, आज बाबा ने ये कहा है, मुझे करना है, उमंग आएगा करने का और वो करेगा। तो टीचर की दुआ अंदर से उमंग पैदा करती करने के लिए, अलबेलापन नहीं आता, करने का उमंग आता है। और जहां उमंग आता है, माना हिम्मत आई, तो गायन हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, बाप की मदद से वो जो करना चाहता है वो कर लेता है। लेकिन टीचर की दुआ तब मिलेगी, पढ़ाई में दो बात है, रेगुलर एंड पंक्चुअल एंड होमवर्क, स्टूडेंट की विशेषता है, रेगुलर, पंक्चुअल और होमवर्क। जो ये दो चीज करता है, क्लास में रेगुलर आता है लेकिन पंक्चुअल, ऐसे नहीं मुरली 7 बजे शुरू होती है तो 7 बजे आए, उसको पंक्चुअलिटी नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्यों? अपना योग आधा घंटा या 15 मिनट पहले चालू हो जाता है, तो जब से चालू होता कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है, योग करना जरूरी है, चाहे सेंटर पर चाहे यहां। क्यों? सेंटर पर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप घर से आते हो, अगर देर हो गई तो दौड़े दौड़े आओगे, जल्दी जल्दी आओगे, और घर के कई काम होते हैं, और आके आप क्लास में बैठे, मुरली चल रही है, उस समय आपका मन एकाग्र नहीं है, तो मुरली सुनते जाओगे, अनुभव होगा, इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकलता जा रहा है। क्लास करके उठोगे, एक भी पॉइंट याद नहीं है कि क्या बाबा ने कहा है। उसी समय ये क्लास में देर से आने की सजा है। उस स्कूल में क्लास में नहीं आने देते उस पीरियड में, यहां भगवान ये नहीं कर सकता। चाहे मुरली पूरी होने वाली हो तब भी आप आओ तो भी कोई मना नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं मना करेगा यहां? क्यों? क्योंकि अपना बाप ही टीचर है और उसी का ही स्कूल है, इसलिए मना नहीं है। अपना बाप ही टीचर है और उसी का स्कूल है, इसलिए मना नहीं है, लेकिन अवज्ञा करने की सजा है जरूर। वो ये है कि पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठी। इसलिए रेगुलर एंड पंक्चुअल, अगर पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठी, आप थोड़ा ध्यान देना, बहुत भारी बात है। आप क्लास में आए, पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठी, क्लास पूरा हुआ आप वापस अपने घर पर जाएंगे। अगर पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठी तो बुद्धि व्यक्त भाव में है, और आपने घर में किसी को कोई काम बता के आए थे ये करके रखना, उसने नहीं किया या गलत कर दिया, या आप पहुंचे किसी ने कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा आ गया, अगर बुद्धि व्यक्त भाव में है तो मुंह से जवान तेज निकल ही जाएगी। अगर आपने गुस्सा कर दिया तो क्या घर वालों को ये कह पाओगे कि आप आश्रम पर चलो, वहां भगवान की पढ़ाई पढ़ाई जाती है? कह पाओगे ये? तो पूरे परिवार की तकदीर खराब करने का पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? बहुत गहरी बात है ये। हमारे कारण परिवार वाले भगवान से वंचित हो गए। सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी को भगवान से मिला देना, सबसे बड़ा काम है किसी को भगवान से दूर कर देना, पाप का काम। इसलिए इस बात पर विशेष अटेंशन दो, अपना भी कल्याण है, परिवार का भी कल्याण है, समाज का भी कल्याण है। तो रेगुलर एंड पंक्चुअल, सतगुरु के साथ फरमान बरदार, जो सतगुरु ने फरमान किया, जी बाबा जी बाबा, संकल्प नहीं चलो। अगर बाबा ने कहा है तो जिम्मेदार है, अगर बाबा के फरमान पर चले तो सदा आगे बढ़ते रहोगे, और बाबा अपने नैनों के पलकों में बिठा के अपने साथ सतगुरु बाबा घर ले चलेगा, और सतयुग में आकर के ब्रह्मा बाप जो श्री कृष्ण बनेगा उसके साथ आकर राज्य करेंगे। तो चारों सब्जेक्ट्स को धारण करके बाप समान बनो, और बाप से पूरा वर्षा ले लो। अच्छा, ओम शांति।